ऐसा कोई चूहा ठाकुर घर में अधिक रहते हैं, चूहे पुराने ठाकुर जी के घर में आसानी से आराम से उनको खाने पीने के लिए मिल जाता है, घी भी पीने के लिए मिल जाता है। इसलिए वहाँ पर ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे ही अपना घर बना लेते हैं। यदि उसका ठीक से संस्कार नहीं किया जाए तो वो पूरा का पूरा खा ले, तो ऐसा ही हुआ होगा। बेटा से पूछा जा रहा, बेटा तू खाली खाल कैसे लाता है? तो प्रभु सब ले लेते हैं खाली। अच्छा तो ठीक है, आज भोग लें। और आज वो बगल में कहीं से छिप करके देख रहा था सचमुच में वो ठाकुर जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो उसने कहा जी प्रभु अब देर मत कीजिए, जल्दी से पधारिए और भोजन कीजिए। बच्चे को उसके पिताजी ने नहीं बतलाया और बस आवाहन किया। आज ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए बहुत। अरे प्रभु आप उतर क्यों नहीं आए, आप भोजन क्यों कर रहे हैं, आज लज्जा आ रही है, नहीं क्यों आपको क्या हो गया? धीरे धीरे आवाज आई, आज तुम्हारे बाप वहां से पिताजी देख रहा है, मैं उनके देखते हुए मैं नहीं आ जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं आई? तो उसको ऐसी भावना और श्रद्धा नहीं, आपको आना पड़ेगा, जैसा भी आप नहीं खाएंगे तो हमको बड़ा दुख। ठीक, तुम अपने पिताजी को छू दो जरा। बस पिताजी को छुआ, छूते ही बस भाव देखा जी ठाकुर जी उतर करके और खा, प्रेम से वो भी भर गया। ये है पूजन का भाव। यदि पूजन में ऐसे भाव न हो, श्रद्धा न हो, तो पूजा का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं वो क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या अर्चन के समय में भक्त्या प्रजच्छति प्रयच्छति प्रकृष्ट रूप से देता है, मैंने भावपूर्वक देता है, ऐसे लोगों का मैं ग्रहण। अर्जुन ने कहा हाँ जो प्रभु आपको नमस्कार है, ये मुझसे नहीं हो, इस युद्ध क्षेत्र में भला ऐसा अर्चन ये मेरे द्वारा नहीं। अब कोई और सस्ती उपाय बतलाइए जो इस युद्ध क्षेत्र में मेरे द्वारा संभव हो। कितना बज गया, 6 बजने में है। अच्छा तो कृष्ण ने क्या कहा, और भी सस्ता चलिए। नमस्कुरु माम, हमें प्रणाम, केवल प्रणाम ही ऐसे नहीं कहा, नमः अहंकार निषेध पूर्वक सर्वधर्मानुपत्तिज्ञ माम एकम शरणम व्रज, ऐसा करते हुए उसकी ये कहा नमस्कार। एक बार नमस्कार करने वाला व्यक्ति कमर में अंगोछा माने साफी बांध कर, जैसे नदी में छलांग देने के लिए ऊपर से कूदता है, छलता है, ऐसे ही मानो हौ सागर को पार करने के लिए एकदम तैयार होकर के और देखता है, जब छलांग लगा दिया तो देखा जी हौ सागर तो पीछे रह गया, मैं बहुत आगे पहुंच गया। एक बार भी कृष्ण प्रणामी पुनर्भवाय, एक बार यदि उनको प्रणाम कर लिया पुनर्भवाय, अब उसके लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये अपने माता के गर्भ में उसे और माता का स्तन पीने के लिए उसको ऐसा एक बार भी प्रणाम, यदि प्रणाम होना चाहिए प्रणाम कैसे। अर्जुन ने कहा जी आपको एक नहीं सत बार आपके लिए तो प्रणाम ही होना चाहिए ऐसा। ये तो एक अर्थ हुआ, एक एक का अलग अर्थ किया ना। और इसमें बतलाया ऊपर में प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, साधन भक्ति, और ये नमस्कार भी साधन भक्ति के अंतर्गत। ये इसको इस प्रकार से अर्थ तो किया, अब इसको ऐसे कर लीजिए। मद भक्तो है ना, मनमना भव, मनमना भवा हो करके अपने चित्त को हमारे में लगा करके हमारा भजन करो, और उसी भजन के अंत में हमारा यजन करते हुए प्रेम पूर्वक हमें नमस्कार करो अंत में, जैसे पूजन कर लेते हैं ना तो अंत में नमस्कार करते हैं ना, साष्टांग प्रणाम करते हैं, ऐसे सब एक हो गया ना भाव पूर्वक बड़े प्रेम के साथ में भक्ति के अंगों का पालन करते हुए प्रभु को नमस्कार करो। ये सर्वगुह्यतमं परमं श्रुणुमे वचः, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ और परम उपदेश। यदि कोई ऐसा कर ले तो बस एक श्लोक से भव सागर को पार कर भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम उत्पन्न। शुद्ध रूप में इसको ब्रज भक्ति भी इससे लाभ हो जाएगी, किंतु इसका उदाहरण गीता में दिया नहीं है, केवल शुद्ध रूप से ये बतलाया है। उसका उदाहरण समस्त श्रीमद् भागवत, इसलिए प्रारंभिक पुस्तक गीता तो गीता का अवहेला अनादर नहीं होना चाहिए, उसको भित्ति बनाते हुए उसी के ऊपर में भक्ति का महल खड़ा करके हम उसी में राधा कृष्ण का पूजन करके अपने भावों से भाव सागर को, ये गीता का सार उपदेश है। आज ये पंचायत, अब हम जब प्रवचन करेंगे, हम लोगों का वो छूट गया है बहुत दिनों से, और बहुत ही अच्छा प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग और अनन्य।
भूतेश्वर
महादेव
पोत्रा कुंड
आदि केशव
जन्मस्थान
महाविद्यालय
सरस्वती
कुंड
अम्बरीश कृष्ण जन्मस्थली देव देवी
किसी गाने मध्य
खाना के छी है के कृष्ण वासुदेव कृष्ण नारायण तत्व সেইখানে জন্মগ্রহণ করে আমি বলেন যে আমি আমাকে নিয়ে বকুলে দিয়া তখন বসুদেব মহারাজ তাকে বকুলে নিয়ে যান নন্দ ভবনে, সেইখানে কৃষ্ণ করুণ থেকে এবং জন্মগ্রহণ জন্মগ্রহণ
করে
মহারাজ কৃষ্ণ চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে আত্মসাত করেন, এইসব কথা নিশ্চিত রূপে বর্ণন করেছে। যখন বসুদেব মহারাজ যোগমায়াকে নিয়ে আসেন সকালের দিকে রাত্রি সময় মানুষ যোগ করে দেবীর কমতিকে যোগ মায়াকে চেনে নেয় পাথরের উপরে ভাবে তখন দেবী বহু অন্যায় বিনয় করে আর পুত্রগুলি মারা গিয়েছে কিছু বলেন না, পেলাম এই কন্যাটা আমার নয়, বিশেষ করে আদলা বদলি হয়েছে, ওই পুত্রকে যতদিন না পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মেয়েকেও আমরা মেয়েকে রক্ষিত রাখ, আর ছেলেকে দিয়ে মেয়েকে আনা হচ্ছে, এখন মেয়েকে দিয়ে তারপর ছেলে আনা, তখন আছাড় দিয়েছেন আর হাত থেকে বেরিয়ে পূজা দুর্গা হয়েছে বলে যে রে পাশ তোমাকে মারবার জন্য অন্যত্র পায়রা নেই, তুমি আমাকে কি পারবে। তারপরে বৈকম কালী এখানে আজকে আপনারা গিয়েছিলেন সেইখানে তখন থেকে পুজো আর কৃষ্ণ বলেছিলেন যোগমায়া তুমি সর্বত্র পূজিত হবে, কোথাও দুর্গা কোথাও বিন্ধ্যাচল আর লোকের মনোবাঞ্ছিক লৌকিক পদার্থ তখন থেকে পূজা চালু সকলের লৌকিক কামনা পাচ্ছি। আমি কালির পরেতে ভূতেশ্বর মহাদেব ভূত মানে প্রাণীগণের ঈশ্বর, তিনি উন্মুখগণকে ভক্তি প্রদান করেন, হেমুখগণকে তাহার মহিন মায়া ভূত করে দুর্গের মধ্যে বন্ধ করে দেয়, এই জন্য তিনি দুর্গা দর্শন করে যদি রঙ্গেশ্বর ভূতেশ্বর ভূপালেশ্বর ত্রিপলেশ্বর ত্রিপলেশ্বর দর্শন না হয় তাহলে প্রত্যাহার পূর্ণ হয় আপনারা এইসব উনি দর্শন করছেন। আবার মহাবিদ্যা যেখানে ওইখানে আশপাশে তখন মথুরা নগরী মথুরানগরী এদিকে ছিল না, এদিকে শুধু ময়দান ছিল, রঙ্গেশ্বরের মন্দির ছিল আর এইখানে প্রচুর ভূমিতে মানুষকে বসবার জন্য সিংহাসন তৈরি করা হয়েছে আর কৃষ্ণ এইখানে কংসকে ধরে টেনে আর তাহার উপরেতে মথুরা ছিল আর ওখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল, যমুনাতে তিনি একদিন একাদশীতে নন্দ বাবা পায়ে পড়েছে আর জিতে আরম্ভ করেছে, সব লোক অনেক চেষ্টা করছে ছাড়ে না, তারপরে কৃষ্ণকে ডাকেছে কৃষ্ণ এসেই পায়ে দিবাতে বস মুখ ধরে আর তার বিদ্যার ঘরে এইসব বৃন্দা স্থান হয়তো আমাদের শিব কুমারা পরিক্রমার সময় এইসব কথা বলেছে। আবার কাল আমরা এখানে আদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বারা, তারপরে শ্বেত বারা,
অনন্ত পদ্মনাথ,
তারপরে অনন্ত পদ্মনাথ, দীর্ঘ বিষ্ণু, কৃষ্ণ বারা হচ্ছেন আদি বারা, ধারণ করে তিনি প্রথমে পৃথিবীকে উদ্ধার করে, পৃথিবীকে হিরণ্যাক্ষ চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে দিয়ে ভারাতে পৃথিবীকে উপর রেখে নিয়ে আসছেন। আর ওইখানে হিরণ্যাক্ষ তারপরে কোন সময় পেটকে তারপরে কৃষ্ণ যখন মথুরাতে প্রবেশ করেন বৃন্দাবন থেকে আসবার সময় সেই সময় ছেলেরা জিজ্ঞাসা করবে কংস মহাপ্রভুমান আর তুমি ছোট বাল কিরকম মারবে, তখন কৃষ্ণ বিরাট রূপ তাকে দেখিয়েছে বড় আকার বিরাট লম্বা চওড়া দেখিয়েছেন মথুরা দেবী দর্শন আপনার
जितने भी किसी भी देश में कोई भी पाप या कोई अपराध करता है तो मथुरा में आने से सारा पाप साफ सब कुछ कट जाता है, और यहाँ रहते हुए जो कुछ भी पाप या अपराध बनता है सारा प्रदक्षिणाया विनश्यति, प्रदक्षिणा करने से सारा सब कुछ दूर होता है। इसलिए ऐसे जन्मों का जो अपराध है पाप है ये सभी कुछ कट जाता है। विशेषकर मत्थते तु जगत सर्वं ब्रह्म ज्ञानेन देनवा तत्सार भूतं तदस्य मथुरा सा निगत्यते। बोले कि संसार में पृथ्वी धन्य है और पृथ्वी पर वृंदावन धाम जहाँ है वो ब्रजभूमि धन्य है, और उसमें ये मथुरा जो कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त संसार को मथित करते हैं और उसका सार स्वरूप है। यत्र भगवान श्री हरि, भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान श्री हरि नित्य का इस मथुरा मंडल में, मथुरा में नित्य काल विराजमान। इसलिए भगवान श्री हरि का निवास स्थान अपना निज धाम जैसे गोलोक धाम है वैसे ब्रज धाम है, दोनों में कोई अंदर नहीं होता है, एक सबसे ऊपर होता है और एक भूमि में स्थित है। इसलिए भूमि में स्थित होने के कारण भौम ব্রজে পাওয়া যাতে আছে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ব্রহ্মা জি কে এক দিন মে এক বার স্বয়ং ইস ধরাধাম মে অবতরিত হতে হ্যাঁ। জব ইয়া আতে হ্যাঁ তব ইয়া পর উনকি লীলায়ে হতি হ্যাঁ। অতএব উনকি লীলায়ে তরহ তরহ কে বিচিত্র প্রকার কে হোনে কে কারণ অতীব ঐশ্বর্য আর মাধুর্য সে পরিপূর্ণ হো জাতা হ্যাঁ। জো কি দুষ্টো কে লিয়ে সব কে লিয়ে অতীব চমৎকার পূর্ণ লগতা হ্যাঁ और वही सबके लिए मनोहारी बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यह आकर के प्रकट होते हैं। जबकि मथुरा में कंस कारागार में देव की वसुदेव जेल खाने में है, तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो कि अंश सह अंश भागे न अंश भाग के साथ जाने पूर्ण और पूर्णतर पूर्णतम भगवान के तीन प्रकाश हैं। उन प्रकाशों में जो कि पूर्ण प्रकाश है उस प्रकाश के साथ अंश भाग के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित हुए। जो कि देवकी और वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण शंख चंद्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सब विस्मयो फुल्ल विलोचनो हरि। वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को देख करके बड़े विस्मित हो उठे, बड़े बड़े नेत्रों से देखने लगे। वसुदेव महाराज विस्फारित नेत्र भगवान श्री कृष्ण के देखते लागे। देवकी के यहाँ पर कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, जो कि 16 वर्ष के बालक जैसे प्रकट हुई और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए थे, जो कि मस्तक पर क्रीट है, कानों में कुंडल है, गले में कस्तुर मणि, हाथ में बाजूबंद और कंकण आदि से सुशोभित, चरणों में नूपुर है, गले में बनमाला है, इस प्रकार पीताम्बर पहने हुए सांद्र पयोद सौभगम, जो नवीन बादल के समान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी यहाँ प्रकट किए। उस समय बड़े विस्मित होकर के देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की, बोले कि विदितो असि भगवान पुरुष प्रकृति पर। देवकी वसुदेव हाथ जोड़े प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, हे परम पुरुष प्रकृति रति, हे परम ब्रह्म, हे स्वयं भगवान, आपने आज के हमारे सामने प्रकट हुए, आज आप हमारे सामने विदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हम सभी कंस से डरे हुए हैं, आपके पूर्वज 6 बालकों को कंस ने मार डाला है, इसलिए हम उनसे डरते हैं। और अभी अभी हुए कंस आपको उम्र प्रहार करने के लिए दौड़ के आएगा और मार डालेगा, इसलिए हम डरते हैं, कहीं आपके ऊपर प्रहार न करें। इसलिए हे भगवान, आप भक्तों के प्राण धन, भक्तों के हृदय संपद, आप अपने स्वरूप को छिपा लें, अपने को गोपन करें। नीचे के आपने गोपन करूं तो हम भगवान श्री कृष्ण की बदले श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एतद्वाम दर्शितम रूपम प्रायजन्म स्मरणाय मे। हे पिता, हे माता, मैंने जो अपना स्वरूप दर्शन कराया, ये पहले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए आपने पहले जन्म में ऋषि और सुतपा के रूप में बहुत काल तक आराधना की है, तो उस समय मैं प्रसन्न होकर के आपको वरदान देना चाहा। उस समय आपने ये वर मांगा कि तुम्हारे जैसे हमें बालक हो। हमने देखा कि हमारे जैसे न तो हमारे समाज कोई है और ना ही उससे बढ़कर के कोई होता है। असमूर्ण तत्व हूँ, जो कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, मेरे बराबर ही करने वाला भी मेरे समान कोई नहीं है। हमारे समान क्यों है ना, हमारे से के बड़ा क्यों है ना। ताकि अभी नीचे के ही दान कर ला, मैंने अपने को दान कर दिया, तब से मैं अपने को पुत्र रूप में दान किया कि आप ही के पुत्र बनकर मैं आया। पहले जन्म में मैंने पृष्णी गर्भ अवतार के रूप में अवतरित हुआ था, दूसरे जन्म में जब आप कर्तव्य और अदिति हो करके आए हैं, तब उस समय मैं वामदेव हो करके आया। इस समय आप लोग देवकी और वसुदेव बनकर आए हैं, तो आप हमारे पिता माता हैं। मैं आप ही का पुत्र स्वयं भगवान हूँ, परात्पर सत्य हूँ। मैं आपका पुत्र वंश के आया हूँ, आप हमसे से डरे नहीं। हमारे हाथ में तो चक्र रहेगा, अभी आएगा तो हम चक्र से मार डालेंगे, परंतु आप इतना क्यों डर रहे हैं? फिर भी वे तो डर के हमारे कांप रहे हैं, क्यों? उनके अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों बराबर रूप में शामिल हो गया है। इसलिए मथुरा भूमि जो है, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों समान समान रूप में, और प्रेम भूमि जो है, प्रेम की भूमि, माधुर्य की भूमि, वहां केवल विशुद्ध प्रेम माधुर्य, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य अपने स्वरूप को अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए, और कहने जाए तो कोई माने ही नहीं। यशोदा मैया ने दो बार कृष्ण का विराट रूप देख लिया, मुंह में ही विश्व रूप को देख ली, जो ब्रह्मांड देखा, परंतु यशोदा मैया ने माना नहीं। और यहाँ जैसे कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और प्रकट हुए, तो देवकी वसुदेव डर के मारे घबराए, उनको बालक रूप में गोदी में उठा करके लाड़ प्यार करेंगे, ये भी नहीं हो पा रहा है। ऐश्वर्य भाव के कारण संभ्रम संकोच बुद्धि आ गई। भक्ति में दो प्रकार की भक्ति कही जाती, एक ऐश्वर्य संभ्रम मूला भक्ति और एक विश्रम भावमय भक्ति और एक संभ्रम भाव भक्ति। तो संभ्रम भाव जहां पर होता है, संभ्रम से संकोच, और वहां प्रेम शिथिल हो जाता है, इसलिए उतना प्यार नहीं हो पाता है। देवती के हृदय में ममता होते हुए भी संभ्रम संकोच के कारण शिथिल हो जाता है, घट जाता है। परंतु माता यशोदा के हृदय में अगाध वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य को देख करके, ऐश्वर्य को मानते ही नहीं, प्रेम की समुद्र में वह एक तिनके के समान ऐश्वर्य, इसलिए ब्रज भूमि माधुर्य की भूमि हुई, और मथुरा भूमि ऐश्वर्य और माधुर्य समानांतर रूप में घूमता फिरता है। इसलिए देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, कांपने लगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, जन्म जन्म में पुत्र बन करके आया, आप मुझे गोदी में लेकर के दूध पिला रहे, वात्सल्य प्रेम को दिखाए, वात्सल्य स्नेह ममता नहीं आ पा रहा है संभ्रम संकोच के कारण। भगवान कृष्ण ने कहा, जब आप डरे हुए हैं तो अच्छा है, तो आप मुझे गोकुल में रख करके आइए, और मेरे बदले में ये कन्या को उठा करके लाए। ये बात कह, इसके पश्चात जबकि हरिवंश में हरिवंश में ही कहा है कि प्राकृत शिशु बहुव, देखते देखते भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक बन गए, अपने स्वरूप को छिपा लिया, बोले कि मुझे गोकुल में रख कर गया है। जन्म का रहस्य तो इस प्रकार है, ब्रह्म जामन के अनुसार गर्भ काले तु असंपूर्ण अष्टमे मासिते स्त्रियं देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तथा। जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, जाने कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय ठीक एक ही समय में, उसी समय में यशोदा माता ने भी कृष्ण को जन्म दिया। वहां पर गर्भ से जन्म हुए, जो कि नाड़ी छेदन हुआ है। यदि गर्भ से जन्म नहीं लेते तो नाड़ी काटने का, नाल काटने का प्रसंग कहां से आ जाता? इसलिए बिना, अब यहाँ तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, इसके पश्चात प्रार्थना स्तुति इत्यादि होने के पश्चात छोटे से बालक बने, और बनने के पश्चात बसदेव महाराज को ले करके जबकि गए हैं, आज हम लोग बसदेव घाट भी दर्शन करते हुए आए हैं, जहाँ बसदेव महाराज जी ने यमुना में पार किया, भरी हुई यमुना, वहाँ जब महाराज जी सियाली के रूप में आई, आ करके पानी के ऊपर चलने लगे, उसे देख करके बसदेव महाराज जी भी पानी पर चलने लग गए, चलते चलते पार किया और उस पर गोकुल में जा करके अपने बालक को रख करके आए, परंतु उनको समझ में नहीं दिया, जो कि श्रीमद् भागवत में यह हमारे आचार्य पादों ने ऐसा वर्णन किया है कि जिस समय यमुना पार हो रहे थे तो उस समय तीन भाग पार हो गए किनारे आने वाले हैं, तो इतने में जबकि यमुना जी का पानी बढ़ने लग गया, यमुना जी के पानी बढ़ने से आप वसुदेव महाराज जी हाथ ऊपर उठाने लगे, कृष्ण को ऊपर उठाने लगे, परंतु इतने में एक छलांग लगाई यमुना में गिर पड़े, और यमुना में गिरते ही अब कृष्ण को टोटलने लग गए, तो उस समय दोनों वर्ग के आचार्य लोगों ने दोनों तरह की बातें करते रहते हैं, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं कि वहां तो मथुरा नाथ श्री कृष्ण वहीं पर अंतर्हित हो गए, और वहां से जो यशोदानंदन है वहां आकर के बसदेव महाराज जी के हाथ में वहां से चले उनको ले, और कोई कहते हैं जैसे श्री बल्लभ कुली के लोग कहा करते हैं उनके समुदाय के आचार्य लोग कि यमुना जी को बड़ी अभिलाषा है कृष्ण के चरण छुने की, इसलिए कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को जान करके और छलांग लगा दी कि वहीं पर यमुना में एक बार यमुना ने उनको स्पर्श कर लिया, परंतु वहां बात्सल्य और श्रृंगार दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यह तो संभव है, इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने कहा कि नहीं, असल में यह रहस्य है जो कि मथुरा नाम से कृष्ण नहीं रह गए और ब्रजविलास से श्री कृष्ण वहां से प्रकट होकर के चले, जो कि बसदेव महाराज जी को वहां समझने नहीं दिया कि वहां पर जो जमत संतान हुए हैं एक बालक और बालिका के रूप में यशोदा मैया को योग माया जी ने सुला दी, कृष्ण ने पहले ही आदेश दिया था गच्छ देवी ब्रजम भद्र, हे कल्याणी हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज में जा मेरी अनुजा बन करके जन्म ग्रहण करना, और उससे पहले जन्म के समय यशोदा मैया को इस प्रकार से नींद में सुला देना है कि उन्हें मेरा जन्म रहस्य भी पता नहीं लगना चाहिए, दूसरी ओर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए मेरा जन्म रहस्य क्या रहेगा, और जितनी भी लीलाएं होगी उसमें कुल सहायता बनेगी, इस प्रकार जो माया जी को भेजा जो अनुजा छोटी बहन बन करके जन्म ग्रहण की है, इसलिए इधर तो कंस ने क्या किया, दिन रात समय गिनते चले गए कि एक एक दिन गिनते जा रहे हैं कि एक महीना दो महीना तीसरे महीना ऐसे करते करते अब कंस सोच रहे हैं कि 10 महीना होने पर बालक का जन्म होगा, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसे चतुराली की 8वें महीना में जो कि गर्भ का पूरा भी नहीं हुआ उस समय प्रकट हो गए, द्वारका में जो भगवान की लीला है वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है माधुर्य नीचे दब जाता है, और ब्रजभूमि जो है माधुर्य की भूमि है जहाँ पर प्रेम माधुर्य इतना ऊंचा उठा हुआ है कि ऐश्वर्य तिनके के समान नीचे दबा हुआ है, यद्यपि कहा है लक्ष्मी सत सहस्र संभ्रम सेव्य मान कि लक्ष्मी जी ब्रजभूमि की कैसी सेवा करती है कि सैकड़ों प्रकार से हजारों प्रकार से लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा ब्रजभूमि में उड़ेल दी है, जो कि वैकुंठ की संपदा क्या है चिंतामणि और कल्प वृक्ष, परंतु यहाँ के ब्रज की एक एक धूल का चिंतामणि है, और वो चिंतामणि जो चिंतामणि है वो गोपियों के पैरों के काम में आता है और कोई काम ही नहीं है, इतनी चिंता पड़ी। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि भूमि चिंतामणि गणमयी मृदा, और जितने भी वृक्ष लताएं हैं सब कल्प वृक्ष कल्प लताएं हैं, जो वृषभान नंदिनी से राधा जी के भाव के द्वारा विभूषित है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भागवत में रमा किरण अभुन्न, जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से रमा लक्ष्मी जी की मुद्रा स्थली बन गई है। इस प्रकार माधुर्य विलास से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जाकर के लीलाएं की और मथुरा में 11 वर्ष 8 महीने तक ब्रज में लीलाएं की। उसके पश्चात मथुरा की लीलाएं हुई, जहाँ की उन्होंने हंस का वध किया, देवकी बुद्धदेव को जेल खाने से मुक्त किया, महाराज उग्रसेन को बंदी से मुक्त कराकर उन्हें राज मुकुट पहनाया, और इसी मथुरापुरी में ही जरासंध ने 23 सक्षरणी सेना लेकर के आक्रमण किया, तब उन सभी सेनाओं को पराजित किए 18 बार में, तो 18 बार ही उन सभी सेनाओं को पराजित किए। 3 करोड़ जवन सेना लेकर के काल जवन भी यहाँ आया और उन्हें मुचुकुंद महाराज के द्वारा सब को भस्मीभूत करा दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी पर भी, यहाँ मथुरापुरी में भी लीलाएं करते हुए असुर संहार आदि भूभार हरण आदि लीलाएं की और ऐश्वर्य भाव को प्रकट किया। इसके पश्चात समस्त जनवंशियों को साथ में उठा करके द्वारका में बसा दी, और द्वारका की लीलाएं हैं आगे चल करके बहुत सारी कथाएं होंगी। मैं अपना वक्तव्य यही करता हूँ।
आप लोगों को जानने के ये काम तो महाविष्णु भी कर सकते थे, भगवान के अवतार का कृष्ण का कारण ये नहीं है, तो कृष्ण के द्वारा भी करा सकते थे, क्योंकि उसी समय में अवतार का भी भूभार का भी समय आया, किंतु कृष्ण ने असुर का संघात नहीं किया, जरासंध को नहीं मारा या लौटाया, राजवन को वो नहीं कराया, ये सब काम महाविष्णु के द्वारा ही हो सकता था।
विष्णु द्वारे कृष्ण करे असुर,
कृष्ण ने जो कंस को मारा कृष्ण ने नहीं मारा, उनके भीतर में
विष्णु
जो विष्णु तत्व है उसके मारा।
रावण अघासुर बकासुर
एंड अदर्स कृष्ण डायनेट टॉप, उनको उनके अंदर में जो विष्णु थे उन्होंने मारा, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, रस का आस्वादन किया, 12 रसों का दस्य विशेष करके रासलीला सर्वोत्तम लीला लीलाओं में शिवराज शिरोमणि, उसके लिए जगत में पश्चकार की लीला लोक वृंदावन में, उसको जगत में प्रकाश करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण अवतरित हुए, इसलिए असुर संहार इत्यादि कृष्ण का वास्तविक नहीं बल्कि वो बाह्य कारण इत्यादि, इसको स्पष्ट स्पष्ट करने के लिए बताया नारद जी व्यास जी के पास है, सब कुछ उन्होंने लिखा, वेदों का विकास किया, पुराणों को प्रकाश किया, महाभारत को प्रकाश किया, उसमें गीता उपनिषद भी आया, किंतु मन प्रसन्न नहीं। और लाल जी ने पूछा, तुमने सब कुछ किया, मन खिन्न क्यों? वही बात अनसेटिस्फाइड। तो उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं जानता हूं, आप गुरु हैं, आप ही जानते हैं, आप तो वैद्य हैं। उन्होंने कहा, तुमने धर्म और काम का कैसा वर्णन किया है, मोक्ष का, वैसे कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ये नहीं जो छोटा भैया जिसका आर पार नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसको बांध दिया कहीं से, कहीं वर्णन नहीं किया, गोपियों के चरणों में गिर गया, अपने मुकुट और बंशीर न पारे हम निर्भर ये किया। इन श्रीलाओं को भक्ति योग के द्वारा समाधि में दे करके उसको भी तो तुम्हारा की तरफ प्रसन्न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंत में कहा गया है, कृष्ण का अवतार का कारण ये है, उत्तरने का भट है काम देव पूरे प्रकार है निर्मल प्रेम को प्रकट करके जगत को शिक्षा देने के लिए देवकी जन्म मारो देते की है जन्म लिया। ये बात है यशोदा जी का घर से वो पूर्ण रूप से निकले और अपने बाहुओं से भीम और अर्जुन इत्यादि के द्वारा असुरों का संहार किया, सखाओं के साथ में गोचारण के लिए गए और गोपियों के काम को वर्णन किया। इसलिए सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत इसी इसी श्लोक में आ जाएगा। मस्त हो श्रीमद् भागवत इज इन दिस वन श्लोक सुखदेव गोस्वामी है टोल्ड लाइफ गौर प्रमाण।